नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी बड़वानी और मैं मोबाइल वाणी के लिए श्री तार सिंह अलावे इस वक्त पाटी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंधावल के शासकीय हाई स्कूल में उपस्थित हूं। और आज हमारे साथ सक्सेस स्टोरी के बारे में, किस प्रकार से सफलता हासिल की जा सकती है या सफलता के मुकाम तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए सीधे तौर से जुड़े हैं अनुपमा मंडलोय मैम। उनसे हम आज जानेंगे कि आज के जो जेनरेशन है तरह तरह के कॉम्पिटेटिव प्रतियोग्यता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल होने के कारण से वो जिंदगी में हार मान लेते हैं। लेकिन ये मैम एक ऐसी अनुभवी मैम है जो कि सफलता की सीढ़ी चढ़ के आज गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे सुनते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में सफलता के मुकाम तक पहुंचे हैं और सफलता हासिल की है। नमस्कार मैम।
नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे मोबाइल वाणी पर इंटरव्यू देने के लिए चुना है। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत। मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरे पास, मैं अभी ग्रेड 3 वर्ग 3 के पद पर हूँ, जब मैं तैयारी करना शुरू करी थी तो मेरे पास बहुत कम समय बचा था कि अब बस 1-2 महीना था कि मेरी एग्ज़ाम आने वाली है। तो मैंने डिसाइड पहले ही कर लिया था कि ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को निकालना है। तो जो भी बच्चे जैसे कि पढ़ते हैं कि इस परीक्षा को निकालना है, इसमें उत्तीर्ण होना है, तो उन्हें भी ये चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए, पहले ही तय कर लेना चाहिए कि अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम निकालें, ऐसा तो पढ़ें। तो कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ता है, थोड़ी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। अगर किसी के पास 5 महीने, 6 महीने या 1 साल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी पढ़े तो बहुत है, क्योंकि बहुत लंबा समय है। लेकिन जैसे कि मेरे पास था या किसी और के पास सिर्फ 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना है, तो फिर उसको तो फिर अपना ऐसा ही टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि कम से कम वो कम दिनों में ज़्यादा समय दे पाए, जो भी है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सरकारी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए कि वो एक्चुअल में, कि वो सिलेबस में है क्या, कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने भी किया कि सबसे पहले उसका सिलेबस देखा, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से विषय थे। फिर उसके बाद में हर एग्ज़ाम में, हर परीक्षा में सब चीज़ों की लिमिट बता दी गई होती है कि हमें इतने से इतना ही पढ़ना है, तो वो उसके बाहर पूछने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते, उसके अंदर ही पूछते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ ये करते हैं कि वो सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में, या फिर बस एक बार सब कुछ बस पढ़ लिया के चक्कर में, एक बार पूरा पढ़ भी लेते हैं जो पढ़ते हैं वो, और वो कुछ काम में भी नहीं आता है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही हो। तो इसी तरह मैंने भी जो सिलेबस था वो देखा, मेरे पास भी बहुत कम समय था तो मैंने अपना बहुत टाइम पीरियड बहुत लिमिट कर लिया था, मतलब एक कि मुझे अगर मेरे पास 1 महीना या 2 महीना है तो दिन के कम से कम मुझे 5-7 घंटे तो पढ़ना ही है। फिर उसके पढ़ने के साथ साथ भी, जो बच्चे ऐसा होता है कि बहुत पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, 1 या 2 नंबर से रह गए होते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप वो टेस्ट नहीं लगाते हैं, वो उस चीज़ को परखते नहीं कि हमने जो पढ़ा है जब वो लिखित में आएगा या फिर हम जब उसकी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो क्या हम उसको करने के कैपेबल होंगे उसके लिए, मतलब हम उसको कर पाएंगे। तो उसके लिए टेस्ट लगाना भी ज़रूरी है। तो टेस्ट भी लगा सकते हैं, चाहे लगा लो आप कुछ कोई पाठ कर रहे हो तो उसी पाठ को पढ़ने के बाद में उसी पाठ का फिर टेस्ट लगा लो, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, 1-1.5 घंटे में हो जाता है। और टेस्ट लगाने के लिए भी आपको कहीं से टेस्ट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं, आजकल तो नेट पर ही सब कुछ, सीधे गूगल पर टाइप कर दो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे हिंदी में मैंने अगर संधि और समास पढ़ी है या रस पढ़ा है, तो मैंने अगर आज के दिन संधि पढ़ी है तो मैं पूरी संधि, अगर मैंने 2 दिन दे दिया कि मेरे को पूरे दिन में संधि समझनी है, तो मैं जैसे ही मेरा संधि का पाठ खत्म होगा तो मैं उसका पूरा नेट पर देख लूँगी टेस्ट, जहाँ जहाँ भी दिखेगा सारा कुछ मिल जाएगा तो लगा लूंगी, इसका मतलब कि चलो मेरा ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी। वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से हैंडल करके अपना जो भी सिलेबस है उसको खत्म करो, और परीक्षा आने के पहले पहले कम से कम थोड़ा टेस्ट लगा लो तो आसानी भी होती है, और जो एक दो नंबर से रह जाते हैं तो उनके लिए भी कह सकते हैं कि वो अगर अपने आप को पहले ही टेस्ट के लिए इतना तैयार कर लेंगे तो फिर वो कैसे ही रहेंगे।
बहुत अच्छी बात है मैम, आपने बताया सिलेबस से संबंधित कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो आजकल के प्रतियोगिता जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बुके नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जैसे कि विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर से हैं, वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाया जाता है और हर प्रकार का जो कोर्स है उपलब्ध कराया जाता है। क्या ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, पास होने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए यूट्यूब पर या अन्य जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है वो भी फायदेमंद होता है?
हाँ जी सर, इस चीज़ को तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिफर करती हूँ, क्योंकि अगर अगर कुछ जैसे गरीब फैमिली से होते हैं, परिवार से होते हैं, वो अपनी कोचिंग की फीस तो पे नहीं कर पाते हैं और ऑनलाइन खरीद भी नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, तो वो YouTube पर जो फ्री में कोचिंग्स होती है और जो बहुत कम पैसों में भी कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे वो YouTube से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद जो हूँ, मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली है, तो मैंने कुछ चीज़ें YouTube से ही पढ़ी थी, तो वो काफ़ी फ़ायदे में आई हमें, चीज़ें आसानी से, वो YouTube वाले भी यही करते हैं, जो चीज़ें हैं उसको आसानी से ही समझाते हैं, और आपको उसी उसी परीक्षा के लिए करना है तो फिर वो उसी परीक्षा के हिसाब से ही करवाएंगे, वरना अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो उसमें फिर ऐसा होगा कि आपको पूरी तरीके से अगर कोई पाठ पढ़ रहे हो तो उसका शुरू से अंतिम तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो यूट्यूब चैनल वाले उतना ही लिमिट चीज करवाएंगे जितना उस एग्जाम के लिए ज़रूरी है।
और दूसरी बात यह है मैम, जैसे आपने बताया कि हाँ कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो सामग्री नहीं खरीद पाता, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन आजकल अधिकतर जो युवा हैं परीक्षा का फॉर्म भर देते हैं और जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीकी आती है तब उनके अंदर पढ़ने की इच्छाएँ होती है, और वो ऐसे सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है वैसे वो पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं, और कई कई तो ऐसे सोचते हैं कि हाँ यार हम तो यूं ही पास हो जाएंगे तुक्का लगा लेंगे, और ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता वाली परीक्षा में, क्या तुक्का कभी कभी उनके लिए कामयाब हो जाता है या फिर तुक्का काम नहीं करता, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए।
मेरा मानना तो ये है सर कि अगर आपने पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, तो फिर तो आपको ऐसे डर की ज़रूरत ही नहीं कि अब क्या प्रश्न आने वाला है और हमें तुक्का लगाने की ज़रूरत होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच के जाता है कि हम तुक्का लगा लेंगे, तो वो तो फिर ऐसे आपका है कि आप 50% के भी नीचे आ जाते हो, मतलब जिनका होना है उससे भी नीचे। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ही लक्की कह सकते अगर है तो उसका तुक्का काम कर भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100 में 1 का होता है ऐसा, या 1 या 2 का होगा, बाकी 99-98 तो ऐसे ही रहेंगे जिनके तुक्के गलत ही जाएंगे। तो मेरा मानना है कि तुक्के पर नहीं निर्भर होना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लो, और जिन्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम पास आ रही है तो अब पढ़ना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते तो मन तो चंचल होता ही है तो उसके लिए क्या है, जो अगर बोल रहे हो पढ़ना है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भी जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, नहीं इकट्ठा पढ़ पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, हो सकता है पूरी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सिलेबस में लेकिन थोड़ी बहुत ही कंप्लीट हो तो आपके कम से कम कट ऑफ तक तो नंबर आ जाए, और अगर आप पूरा ही सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो फिर तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो वो तो आपके लिए फिर बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। तो मेरा मानना नहीं है कि तुक्के पे निर्भर होना चाहिए।
यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय रहते पढ़ना चाहिए, जैसे कहावत कहते हैं हिंदी में कि कल करे सो आज करे सो अभी कर, तो ये चीज़ें जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में।
जी सर, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल समय रहते पढ़ना भी चाहिए, और अगर कम समय हो तो फिर कम दिन बचे हो तो ज़्यादा समय दे के पढ़ना चाहिए।
एक और आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कई प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सरल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ कठिन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैंने खुद कॉम्पिटेटिव 3 एग्जाम लिखे हैं, पटवारी के एग्जाम, टीचर्स के एग्जाम और वन रक्षक की एग्जाम लिखी जेल प्रहरी की, तो उसमें मैंने देखा कि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उसमें से ज्यादा सवाल पूछते हैं, और जो सरल सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत कम सवाल पूछते हैं। तो ये कठिन सब्जेक्ट के लिए अधिकतर बच्चे जो होते हैं मेहनत नहीं करना चाहते, पहले से हार मान लेते हैं। तो थोड़ा सा बताइए आप कि किस प्रकार से पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न थोड़ा सा।
कठिन सब्जेक्ट में बच्चों को सबसे ज़्यादा, जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा गणित से ही डर लगता है, जहाँ तक मैंने देखा है। तो वो पहले ही तय कर लिए होते हैं कि जैसे ही गणित आया, मैथ्स आया, तो कि अब तो ये होगा ही नहीं। तो तो ये मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है, हर कठिन सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें सरल भी होती हैं, कुछ पार्ट सरल भी होते हैं। तो अगर आपको इतना हद तक कठिन तक नहीं भी पहुंचना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उसमें जो सरल पार्ट है उस सरल पार्ट को तो आप कर ही सकते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल दे दूं, गुणा भाग और जोड़ घटाओ की चीज़ है तो वो गणित में आती है। तो अगर किसी को नहीं आता है भाग और गुणा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि उसे जोड़ और घटाओ भी नहीं आते होंगे, वो तो आ ही जाएगा ना। तो कम से कम उस सब्जेक्ट की सरल चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और एक बार आप पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार उसके थोड़े कुछ पुराने वाले जो पेपर होते हैं, पिछले सालों के पेपर, तो उसको एक बार देख लो, तो हमें पता चल गया होता है कि इसमें सवाल कैसे पूछे गए होते हैं, तो उसमें से थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। तो ऐसा कर सकते हो कि पूरा कठिन पर अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो कुछ सरल पाठों को देख लो उसमें से।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने वास्तव में प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं उसकी कैसे तैयारी करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सरल और बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी तक ये संदेश पहुँचेगा और वे सभी लोग इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। आपने आपका कीमती और बहुमूल्य समय मोबाइल वाणी पर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।